हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत नहाकर बाहर निकला। उसने उस वक्त ब्लैक कलर की शर्ट और उसके नीचे ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा था। वो अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछते हुए मिरर में खुद को देख रहा था कि तभी अचानक उसे राविया की कमजोर आवाज आई। उसने आंखें उठाकर राविया के चेहरे को देखा। राविया की बंद पलकें धीरे धीरे खुलने लगी थीं और अचानक ही राविया में दर्द भरी आवाज में कहा, मेरा सिर इतना क्यों दुख रहा है? इतना बोलकर राविया आहिस्ता से बेड पर उठकर बैठ गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और फिर धीरे धीरे आंखें खोलकर सामने देखा। उसे कुछ पल के लिए सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसने दो तीन बार गर्दन हिलाई और फिर से आंखें खोलकर सामने देखा। इस बार उसे थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा था। फिर उसने आसपास देखा और तभी उसकी नज़र अनंत पर गई, जो उसे बड़े गौर से देख रहा था। राविया ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है और आप मुझे साफ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अनंत ने एक गहरी सांस ली और फिर धीमे कदमों से उसके पास आकर टेबल पर रखा नींबू पानी का ग्लास उसके हाथ में रखते हुए बोला, कल रात को तुमने ड्रिंक कर ली थी, उसकी वजह से तुम्हारा सिर दर्द हो रहा है। लो, नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ये सुनते ही राविया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने हैरानी से अनंत की तरफ देखा। अनंत के चेहरे पर फिलहाल कोई इमोशन नहीं थे, इसलिए राविया नहीं समझ पा रही थी कि अनंत उसके बारे में क्या सोच रहा है। ऊपर से उसे ये भी नहीं याद आ रहा था कि उसने ड्रिंक कैसे की थी, क्योंकि उसने तो यहाँ आने के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हाँ, वो दूसरी बात है कि वो ड्रिंक ज़रूर करती है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक थी। वो अकेली रहती थी और उसे अक्सर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता था, और उसे दूर करने के लिए वो कई बार क्लब वगैरह जाकर ड्रिंक भी कर लेती थी। राविया ने थोड़ा हिचकिचाकर अनंत के हाथ से वो नींबू पानी का ग्लास लिया और फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मैंने आपको ज़्यादा तंग तो नहीं किया ना पीकर, क्योंकि फ़िलहाल तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर सोचूंगी तब मुझे कुछ याद आएगा। वैसे मुझे ड्रिंक करने की आदत है, लेकिन कम से कम यहाँ आने के बाद तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी शराब पीऊँगी। मुझे ऐसे काम करने का मन जब भी करता है तभी मेरे सामने सासू माँ का चेहरा आ जाता है और मैं। अनंत ने आहिस्ता से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं है, तुम पहले ये नींबू पानी पी लो, उसके बाद बोल लेना। सुबह उठते ही बकबक करना शुरू कर देती हो, तुम्हारा मुंह दर्द नहीं करता है क्या? ये सुनकर राविया ने मुंह बनाया और फिर एक सांस में वो नींबू पानी खत्म कर दिया, जिसके बाद अनंत ने उसके हाथ से ग्लास लेते हुए कहा, अब बैठकर सोचती रहो कि तुमने कल क्या कहा था और आज तुम्हें क्या करना है, क्योंकि आज की डेट तो तुम्हें याद होगी। इतना बोलकर अनंत बेड से उठ गया और फिर मिरर के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगा। तो वहीं राविया शॉक में जा चुकी थी। उसे अचानक याद आया कि आज उसके डिवोर्स की डेट थी। उसने जल्दी से कैलेंडर की तरफ देखा, जहां आज की डेट पर क्रॉस का निशान लगा हुआ था, जो शायद अनंत ने लगाया होगा। फिर राविया खुद को संभालते हुए बेड से उठी और लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम के अंदर चली गई। अनंत बस उसकी तरफ जाते हुए देखता रह गया। उसे लगा था शायद राविया कुछ कहेगी, लेकिन उसके मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकला था। ये देखकर अनंत ने दांत पीसते हुए कहा, अगर अब इस लड़की ने ये कहा कि कल रात जो था वो सब कुछ नशे की हालत में था, तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगा। एक तो मेरे दिल में इतनी सारी उम्मीदें जगा दी, ऊपर से कुछ बोल भी नहीं रही है, मुझे बुरी तरह डरा चुकी है। बाथरूम में जाते ही राविया ने ठंडे पानी का शावर ऑन कर लिया था। बहते पानी में उसकी आंखों से बहते आंसू नहीं नजर आ रहे थे। कुछ पल वो धीरे धीरे सिसकते हुए खुद को कोस रही थी। मुझे जब भी कोई पसंद आता है तो क्यों मुझसे दूर हो जाता है? मैं क्यों किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती हूँ? भगवान जी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे मिस्टर हिमानी के साथ रहना है, मुझे इस घर में रहना है, और ऐश्वर्या आराम की जिंदगी के लिए नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए। मुझे तो अपनी फैमिली की तरह लगने लगा है। अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मेरी लाइफ पहले की तरह बोरिंग सी हो जाएगी। उस लाइफ से अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इतना बोलकर राविया बुरी तरह रोने लगी। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया, तो वहीं अनंत बेचारा बेबस होकर बेचैनी से बाथरूम के दरवाजे के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसे बस इतना चाहिए था कि राविया जल्द से जल्द बाथरूम से बाहर आ जाए और उसके बाद वो उसे बताए कि रात में उसने उससे क्या क्या कहा था, और उसके बाद अब उसे उसकी रियल ओपिनियन जानना था, क्या सच में वो उसके साथ रहना चाहती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ रूहान और अनाही भी उठ चुके थे। अनाही अभी नहा कर आई थी। उसने मेहरून कलर की साड़ी पहन रखी थी और उसका ब्लाउज स्लीवलेस था, जिसकी वजह से उसके कंधे पर रूहान ने जो फूल बनाया था वो दिखाई दे रहा था। रूहान जो बेड पर लेटा था वो नींद भरी नजरों से एक टक अनाही को देख रहा था। अनाही ने हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं रूहान जी, आपको उठना नहीं है क्या? आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी मुझे। गुड न्यूज का नाम सुनते ही रोहन झट से उठा और फिर तेज कदमों से अनाही के पास आते हुए बोला, क्या सच में आपके पास मेरे लिए कोई गुड न्यूज है? रोहन का एक्साइटमेंट देखकर एक पल के लिए तो अनाही को हंसी आ गई, लेकिन फिर अनाही ने हेयर ड्रायर को वहीं रखा और फिर मोड़ते हुए रोहन के पास आकर उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, हाँ ऑफ कोर्स, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है जिसे सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। ये सुनकर तो रोहन का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया था। उसने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, तो फिर बताइए ना, इंतजार किस बात का कर रही है? मुझे सब्र नहीं हो रहा है, क्या हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं? मुझे ऐसी ही कोई गुड न्यूज चाहिए। इतना बोलते हुए रोहन ने कसकर अनाही की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया था और उसे अपने करीब कर लिया था। तो वहीं अनाही ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई गुड न्यूज नहीं है, बल्कि वो तो इससे भी ज्यादा अच्छी गुड न्यूज है। रोहन ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, मेरे लिए अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा अच्छी गुड न्यूज कुछ नहीं हो सकती है मैडम जी, फिर भी आप बताइए आपके पास क्या है मुझे बताने के लिए। अनाही मुस्कुराई और फिर रोहन के हाथ अपनी कमर से हटाते हुए उसकी कलाई पकड़कर बोली, चलिए आपको दिखाती हूँ। इतना बोलकर अनाही रोहन का हाथ पकड़े उसे बालकनी में ले गई। रोहन को अभी तक भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनाही उसे क्या दिखाना चाहती है। बालकनी में जाते ही उसे शुगर के बोलने की आवाज आई, जिसके साथ ही रोहन के कान खड़े हो गए। रोहन ने जल्दी से सामने देखा, शुगर के पास उसी के जैसे दो सफेद उसके बच्चे थे जिनकी आंखें फिलहाल खुली नहीं थी, और शुगर उनके पास बैठी गर्दन टेढ़ी करके बस उन्हें देख रही थी। उसी के पास उसका खाना भी रखा हुआ था। रोहन ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, शुगर बेबी के बेबी। रोहन का रिएक्शन देखकर अनाही को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, आपकी शुगर बेबी ने दो बिल्ले पैदा किए हैं, मैं तो इस एक को पालते पालते थक गई थी, अब इन दोनों को कैसे संभालूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है, और आपकी शुगर बेबी इतनी ज्यादा शैतान है, पता है आज सुबह मैं इसे खाना दे रही थी तो भी मेरे हाथ पर पंजा लगा दिया।
रोहन ने जल्दी से घबराते हुए कहा, दिखाइए आपका, कहीं आपको ज्यादा तो नहीं लगी? अनाही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे पता ही था कि ये ऐसा ही कुछ करेगी, इसलिए मैंने इसके पहले ही नाखून काट दिए थे और मुझे चोट नहीं लगी है, लेकिन फिर भी इसे थोड़ा समझदार होना चाहिए, इसे पता होना चाहिए कि हम अगर इसके मालिक हैं तो हम इसे परेशान नहीं करेंगे, बल्कि इसके भले के लिए ही इसके पास आएंगे। रोहन ने जल्दी से गुस्से में शुगर को देखते हुए कहा, हाँ, इसके लिए मैं इसके अलग से क्लास लगाऊंगा। फिर उसने प्यार से उन बच्चों को देखते हुए कहा, लेकिन ये कितने ज्यादा क्यूट हैं,